हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 15। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। अध्याय 12 श्लोक संख्या 15। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अमृतमयी शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान अपने प्रिय भक्तों की निशानियां बताते हुए कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय है। अत्यंत ही सुंदर और प्रेममयी शब्द कृष्ण के मुखारविंद से निकल रहे हैं। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। भगवान कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः, हर्षामर्षभयो द्वैगै, मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः, हर्षामर्षभयो द्वैगै, मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजति लोको लोकान्नो द्विजति चयः हर्षामर्षभयो द्वैगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। शब्दार्थ यस्मान नो द्विजते लोको, यस्मान माना जिससे, नो अर्थात न मतलब कभी नहीं, उद्विजते, उद्विजते का मतलब उद्विग्न नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते। कौन? लोको, लोग, वो व्यक्ति जिससे दूसरे लोग विचलित नहीं होते हैं। और लोकान यानी लोगों से नो उद्विजित, वो भी विचलित नहीं होता है, मतलब वो इतना अपने अपने प्रेम, कोई एक प्रेमी होता है ना भगवान का, वो इतना फोकस्ड होता है भगवान के साथ, इतना जुड़ा हुआ होता है कि वो किसी को भी, वो मतलब इतना जुड़ा होता है जिससे उससे कोई भी विचलित, किसी को डिस्टर्ब करने वाला कोई काम नहीं करता, बस वो लगा रहता है अपनी सेवा में, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है और उससे कोई डिस्टर्ब नहीं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। और वो स्वयं भी दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे उसको कुछ भी सरोकार नहीं रहता। तो भगवान बताते यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेग है। हर्षामर्ष, हर्ष का मतलब होता है सुख और अमर्ष मतलब दुख, भय मतलब खौफ और उद्वेग यानी तथा चिंता। वो हर्ष, शोक, भय और चिंता में से मुक्त है, ना तो उसे किसी भौतिक वस्तु के आने का हर्ष होता है, ना ही उसके छिन जाने का दुख होता है, ना उसे भविष्य का भय होता है, ना उसे मतलब पास्ट का, अतीत का भय होता है और ना ही आगे की चिंता होती है। मुक्त, इन सब से मुक्त होता है यह वो व्यक्ति सच में प्रिय। कृष्ण कहते मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद भगवान कहते हैं जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख में दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो भी वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी भी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषय व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है
और जब वह कुछ भी करने में असफल होता है तो वह निराश हो जाता है। ऐसे भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होते हैं कृष्ण को अत्यंत प्रिय होते हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति कीरं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 13 14 15 16 17 18 19 20। ये जो 8 श्लोक है ना, ये 8 श्लोकों में भगवान ने ये बताया है कि मुझे कौन प्रिय लगता है। वास्तव में भक्तों, एक भक्त जब वास्तव में भक्त बनता है ना, एक व्यक्ति जब वास्तव में भक्त बनता है तो उसकी एक ही इच्छा होती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कृष्ण को प्रिय लगूं, है ना। ये हम जो कर रहे हैं, जो भी हमारी साधना है, जो भी हमारी सेवा है, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकलना है कि हम चाहते हैं कि हम किसी तरह से कृष्ण को प्रिय लगे, कृष्ण के हृदय में हमारे लिए प्रेम उत्पन्न हो। तो इस भौतिक जगत में भी हम किसी के हृदय में जब प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं तो वही व्यक्ति बताएगा ना कि मुझे कैसा व्यक्ति अच्छा लगता है। हमें नहीं खबर, हम किसी जैसे कोई साधारण लड़की होती है, वो अगर किसी राजकुमार से प्रेम करने के विषय में सोचती है तो वो सबसे पहले ये जानना चाहेगी कि आखिर उस राजकुमार को क्या क्या वस्तु, कौन कौन सी क्वालिटीज अच्छी लगती हैं, कौन सी उसको अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो क्या करेगी, अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करेगी, क्योंकि वो जानती है कि मुझे उसका प्रेम प्राप्त करना है। उसकी एक इच्छा होती है कि मुझे उसका प्रेम प्राप्त करना है, और जब ये उसका संकल्प दृढ़ होता है ना, तब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसी तरह से सबसे पहले ये जो कृष्ण भक्ति है ना, इस कृष्ण भक्ति का मूल क्या है कि आपको यह श्रद्धा हो कि कृष्ण भक्ति को ले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, आपके अंदर इतनी दृढ़ता हो एकदम हृदय के अंदर। जैसे हमने कल पढ़ा, भगवान ने बताया कि संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, उसका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। बस यही कृष्ण का प्रेम, यही कृष्ण की प्रसन्नता ही मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सहना पड़े, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जब यह दृढ़ निश्चय आ जाता है ना, फिर भक्त जो है वो अपने जीवन को परिवर्तित करता है। वास्तव में जब तक हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता है, तब तक तो प्रेम, समझो एक प्रेम जब हमने करना शुरू किया ना, आज भगवान इस भक्ति योग में बस प्रेम का ही बखान कर रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय लगता है। हमें तो कृष्ण प्रिय लगते हैं, लेकिन मजा तो तब हो जब हम भी कृष्ण को प्रिय लगे। तो जब हम उनके हृदय में अपना प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, तो अपने आप को मूलतः चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमारे अंदर। और दृढ़ निश्चय का क्या मतलब होता है, जैसे इस भौतिक जगत में भी आप देखो, जब तक कोई दृढ़ निश्चय से कोई कार्य नहीं करता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। कैसे, जैसे अगर आप कोई विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन यदि उसके अंदर आपका दृढ़ संकल्प नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है कि मुझे एनी हाउ अच्छे ग्रेड से पास होना है, तब तक तो समझो आप पढ़ रहे नहीं हो, बस टाइम पास कर रहे हो, है ना, किसी बिजनेस में आप कोई बिजनेसमैन हो, उसके अंदर भी यदि आपका दृढ़ निश्चय नहीं होता है, संकल्प दृढ़ नहीं होता है, तब आप उसमें सक्सेस नहीं करते हो।
मतलब किसी भी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करते हैं तो फिर क्या होता है, सारा वातावरण हमारा साथ देने लगता है। जब हम आगे मतलब फोकस्ड होते हैं ना, जब हम अपने लक्ष्य की ओर, तब लक्ष्य भी हमारी ओर फोकस्ड होता है। और बाकी इस भौतिक जगत में क्या होता है कि हम उस लक्ष्य की ओर अपनी मेहनत से जा रहे होते हैं, लेकिन जब लक्ष्य कृष्ण है तो फिर हम जितना कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं, जितना हमने कृष्ण को फोकस किया होता है, कृष्ण की ओर अपना दृढ़ निश्चय बनाया होता है, उतना ही कृष्ण भी हमारी ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ पर जो भौतिक जगत में जितने भी हमारे गोल ऑफ लाइफ है ना, वो निर्जीव है, और अगर जीवित भी है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है तो भी वो मेटेरियल बॉडी की बात होती है, वहां आत्मा का संबंध नहीं होता है। क्योंकि हम अपने आप को ये देह समझते हैं, इसीलिए किसी अन्य व्यक्ति की देह की ओर आकर्षित होकर उसको प्राप्त करने की के लिए प्रयास करते हैं। तो फिर उस भौतिक जगत में भी जब हम डिटरमाइंड हो जाते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ जब उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो हम उसे प्राप्त कर ही लेते हैं। इस तरह से अगर हम भगवान को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो फिर भगवान की ओर से कृपा भी तो होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा, भगवान ने हमें श्लोक नंबर 7 में बताया कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगिने माम ध्यायन्तु उपासते। जब वो अपने सारे कर्मों को मेरे लिए समर्पित कर देता है और अनन्येनैव योगिने बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ माम ध्यायन्तु उपासते, मेरा ध्यान करता है, मेरे साथ अपना संबंध जोड़ता है, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तेषाम अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैं उसको मृत्यु संसार सागर से बाहर निकाल लेता हूँ, भवामि न चिरात् पार्थ, उसमें देर भी नहीं लगाता हूँ। तो अभी ये जो प्रेम का मार्ग है ना, इसपे भक्त और कृष्ण दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। भक्त इस भौतिक जगत से आगे बढ़ता है और कृष्ण आध्यात्मिक जगत से हमारी ओर आने लगते हैं। कृष्ण के चरण बहुत ही तीव्रता से भक्त की ओर बढ़ रहे होते हैं। भक्त जितना भले भक्त जो है वो भौतिक आसक्ति उसके अंदर होती है तो वो इतना आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन वो डिटरमाइंड जैसे होता जाता है, उसका निश्चय पक्का होता है, वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो कृष्ण 10 कदम आगे बढ़ाते। तो यहाँ पर हमने कल पढ़ा अद्वैष्टा सर्वभूताना, अद्वैष्टा सबसे पहली बात, जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या होगी दूसरे व्यक्तियों से, ईर्ष्या का मतलब होता है वो आगे क्यों बढ़ गया, है ना, उसने इतना सक्सेस क्यों प्राप्त किया, जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या होती है तब मैत्र करुण ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, पहला जैसे ये 3 क्वालिटीज है, अद्वैष्ट सर्वभूताना मैत्र करुण एवच, और मैत्र का मतलब होता है मैत्रीय भाव, मित्रता का मतलब होता है जिसके अंदर कोई कपट ना हो। ठीक है, अगर आप किसी के मित्र बनना चाहते हो, अब देखो ये सर्वभूता नाम सबके साथ रहेगा, मैत्र यानी सबका मित्र होना चाहिए और करुणा यानी सबके ऊपर करुणा। अगर आप सबके मित्र हो, सबके लिए आपके हृदय में करुणा है, तो आप किसी के प्रति ईर्ष्या कैसे कर सकते हो। और करुणा का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति की कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए सहायता, इसके अतिरिक्त तो और कोई भौतिक वस्तुएं प्रदान करना कोई करुणा नहीं है। बस कैसे मैं इन झुलसते हुए प्राणियों को जो कि दुखों के समुद्र में गहरे से गहरे डूबते जा रहे हैं, कैसे मैं उन्हें वास्तविक आनंद की ओर लेकर जाने का के लिए सहायता कर सकूं, मैं कैसे माध्यम बनूं इस जीव और कृष्ण को मिलाने का, बस ये करुणा है। निर्ममो निरहं, निर्ममो लेकिन किसी के अंदर कोई भी
ममता नहीं, कोई भी वस्तुओं में आपके अंदर करुणा तो जीवों के प्रति है, लेकिन आपके पास जो भी है किसी के अंदर भी कोई सामित्व की भाव नहीं। बस ये कृष्ण के हैं, जो भी मेरे पास है चाहे वो व्यक्ति है या वस्तु, वो कृष्ण की संपत्ति है। तो किसी के अंदर ममता नहीं होगी। निरअहंकार यानी अहंकार ये भौतिक वस्तुओं का होता है ना हमारे पास, जब आप ही कृष्ण के हो तो आपका कुछ कैसे हो सकता है? जो कुछ भी है वो कृष्ण का है, तो फिर अहंकार का सवाल। एक भक्त जो वास्तव में अपने आप को समझ गया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, तो फिर वो अहंकार किस बात पे करेगा? सिर्फ इस बात पर कि कृष्ण मेरे हैं, बस मैं कृष्ण का हूँ तो डेफिनेटली कृष्ण मेरे हैं, बाकी ये सब कुछ कृष्ण का है। जो कुछ आज मेरे पास है, जो कुछ कल मेरे पास था, जो मेरे से छीन लिया गया, वो सब कृष्ण का ही है। वो कृष्ण अपनी संपत्ति को कुछ समय के लिए मुझे प्रदान करते हैं और फिर अपनी संपत्ति वापस ले लेते हैं, तो मेरा कुछ नहीं। निरअहंकार सम दुख सुख हक्षमी, चाहे दुख होता है तो वो क्या सोचता है? भक्त दुख और सुख को समान समझता है, क्योंकि वो जानता है सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। कृष्ण की इच्छा से, इच्छा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो जो मुझे दुख दे रहा है या वो जो मेरे दुख का कारण बन रहा है, वो भी तो कृष्ण की इच्छा से ही कर रहा होगा। तो भले जो भी हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा है, और कृष्ण की इच्छा में मुझे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना। उसे अच्छा लगता है मैं उसका हूँ, वो मुझे किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो मुझे किस तरह से यूज करते हैं, मुझे मैं तो उनके हाथों का एक मतलब उनका भोग्य हूँ ना। मेरे द्वारा उनको किस तरह से मुझे यूज करके उन्हें आनंद आता है, ये उनकी मर्जी है। सम दुख सुख, तो चाहे वो मुझे सुखी रख के आनंद लेते हैं या मुझे दुख पहुंचाकर आनंद लेते हैं, ये उनकी इच्छा है। क्षमी, फिर वो उनके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करता है वो उनको क्षमा करते। किसी के हृदय में, किसी के लिए हृदय में कोई ऐसा कपट जैसा या बदले का भाव नहीं रखते हैं। संतुष्ट सततम, सततम का मतलब होता है निरंतर संतुष्ट है, भले ही उसे उसकी वांछित वस्तुएं प्राप्त हो अथवा न हो, वो कंटिन्यूस संतुष्ट होता है। क्यों? यतात्मा दृढ़ निश्चय, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है, उसका विश्वास पक्का है कि कृष्ण मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो उसमें ही मेरा कल्याण है। जब ये सोच आ जाती है ना एक व्यक्ति को, एक एक, एक मनुष्य को, जब ये सोच आ जाए ना कि कृष्ण मेरे साथ कभी बुरा कर ही नहीं सक रहे हैं, हर कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, तो फिर वो संतुष्ट रहेगा। ठीक है, ये हुआ तो भी कृष्ण की कृपा, वो हुआ तो भी कृष्ण की कृपा, सब कुछ कृष्ण की कृपा से होता है, क्योंकि मैं अर्पित मनोबुद्धि, ये बहुत ही आवश्यक है। आज हम भक्ति योग में हैं और भक्ति योग जो है उसका मेन पॉइंट ये है कि मन और बुद्धि कृष्ण को समर्पित कर दिया जाए। ये शब्द भगवान ने कितनी दफा बोला है, बार बार भगवान बोल रहे हैं कि मैं अर्पित मनोबुद्धि, है ना। सबसे पहले भगवान ने कहा श्लोक नंबर 2 में, मैयावेश मनोयम, अपने मन को मुझ में लगाओ। फिर भगवान ने कहा कि मैयाव मन आदत सो मई बुद्धि निवेश, श्लोक नंबर 8 में बताया कि मन को मेरे अंदर स्थित करो और बुद्धि मुझे दे दो। और आज वापस से भगवान कह रहे हैं मई अर्पित मनोबुद्धि। जब तक ये नहीं कर देते ना, जब तक मन संसार में लगा हुआ है, मन में संसारी विचार चल रहे हैं, भौतिक आसक्ति अभी तक मन के अंदर है और बुद्धि में भौतिक विचारों का कब्जा है, तब तक हम कृष्ण को प्यार नहीं कर सकते। ये जो मन है ना वो एक मैयान की तरह है, और एक मैयान में दो तलवारें नहीं रह सकते, है ना। एक मैयान में एक ही तलवार, या तो आप उस मन के अंदर भौतिक वस्तुओं को, भौतिकता को रखोगे या कृष्ण को रखोगे? एक एक हृदय में। इसीलिए जब गोपियों के पास उद्धव गए थे तो उद्धव ने कहा था कि ये जो कृष्ण है ना, वो वास्तव में वो ब्रह्म है, परब्रह्म है, तुम उसकी उपासना करो, परब्रह्म कृष्ण है, और तुम इसलिए उसके लिए रो रहे हो इतना ज्यादा। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव, जिस परब्रह्म कृष्ण की, जो निराकार है, जो कण कण में रहता है, उसके माँ बाप कौन है? तो बोला, उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है, वो तो निराकार है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। तो बोला, हम तो उस कृष्ण से प्रेम करते हैं जो यशोदा का बेटा है, जो वसुदेव के पुत्र है, उनसे प्रेम करते हैं। फिर बोला, उद्धव वो दिखता कैसा है? बोला, दिखता कैसा है, वो निराकार है, वो तो कण कण में है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो हर जगह है। बोला, मगर उद्धव, हम तो उस कृष्ण को प्यार करते हैं जो सांवला दिखता है, वो जो इतना सुंदर है, जो किसी की ओर देख ले या जो उसको एक बार देख ले, उसको और कुछ देखने के लिए अच्छा ही लगता। वो उसके मन में, उसकी जो मुस्कुराता हुआ, उसके जो होंठ इतने मधुर हैं, उसके नेत्र इतने मधुर हैं, वो ऐसे चलता है, वो ऐसे बोलता है, तो हम तो उससे प्रेम करते हैं। अच्छा, जो तुम्हारा कृष्ण है, वो काम क्या करता है? तो बोला, वो भगवान है, वो कोई काम नहीं करता, वो निराकार है। बोला, लेकिन उद्धव, हम तो उस कृष्ण से प्रेम करते हैं जो गैया चराता है, बांसुरी बजाता है। अब हम तो विवश हैं उद्धव, उद्धव मन न भये दस बीस, एक ही तो मन था, वो तो कृष्ण को दे दिया, अब दस बीस होते तो उसमें से एक उठा के तुम्हारे निराकार भगवान को भी दे देते, निराकार पर जो कण कण में बस रहा है उसको भी एक मन दे देते। एक ही मन था हमारे पास और वो तो कृष्ण लेके गया। मतलब जब तक कृष्ण के प्रति एक निष्ठ नहीं हो जाते हैं, तब तक ये सब एक हमारा प्रेम का जो केंद्र है वो कृष्ण बनना चाहिए। तभी कृष्ण ने कह दिया, ये यथामाम प्रपत्यम ते तांस तथैव बजामि हम, तुम जिस भाव को लेकर मेरे पास आओगे मैं भी उसी भाव से तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो हम जब तक कृष्ण को एकमात्र अपना प्रीतम मानकर उसकी ओर नहीं जाएंगे, तो सोचे भी मत कि वो हमें अपनी प्रियतमा बनाएगा। आज के श्लोक में भगवान ने कहा, यस मान नो द्विजते लोको, द्विजते का मतलब होता है विचलित होना, मतलब जो जिसके कारण किसी को भी कोई भी विचलित नहीं होता है, मतलब वो अपने इतना ज्यादा वो व्यवसाय। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बताते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 41 में, दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 41 में भगवान बताते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हक्कुरु नंदना बहुशाखायनंता से बुद्धयो अव्यवसायना। व्यवसाय यानी अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? एके हकुरु नंदना, बस बुद्धि एक उसी दृढ़ संकल्प के साथ कृष्ण के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त ना मेरा कोई गोल है, कृष्ण के अतिरिक्त ना ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, और ना ही कृष्ण के अतिरिक्त कुछ प्राप्त करके मुझे आनंद प्राप्त हो सकता है। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण, और मुझे उसी की ओर आगे बढ़ना है, तो क्या होगा? उससे आप आनंदित हो जाओगे। ये सिर्फ गोल आपका हो जाए ना, खाली भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, ये जो भगवान को प्राप्त करने की दृढ़ श्रद्धा है ना, वो प्राप्त करना कठिन है। एक बार आपके हृदय में ये श्रद्धा विकसित हो जाए, ये दृढ़ निश्चय विकसित हो जाए कि कृष्ण ही मेरे जीवन का एकमात्र आनंद का केंद्र है, कृष्ण के अतिरिक्त और किसी वस्तु में ना आनंद है, ना सुख है, और ना ही कोई मेरा लक्ष्य है, जब ये हमारे मन में आ जाए ना एक बार, फिर तो बस कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो आप जब एक दफा उस पर केंद्रित हो गए ना, तो उस वो जो आपका जो दृढ़ संकल्प है ना वो ही आपको आनंद करा देगा। कृष्ण तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, उसी समय से आप आनंदित हो जाओगे क्योंकि आपने एक रास्ता जो बिल्कुल परफेक्ट रास्ता उस पर आप चल रहे हो। तो बहुशाखायनंता से बुद्धयो व्यवसायिनः, जो अव्यवसायी होते हैं जिनका अभी तक संकल्प दृढ़ नहीं है उनकी बुद्धि तो बहुशाखा, कभी सोचते हैं शायद कृष्ण से मुझे वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, शायद मुझे माला करने में वो आनंद नहीं आ रहा, शायद मैं ये कर लूं तो मुझे आनंद आए, थोड़ा घूम फिर लूं, थोड़ा फिर मैं ना मूवी देख लूं, थोड़ा सिनेमा चला जाऊं, थोड़ा भौतिक आनंद ये खा लूं वो खा लूं। बहुशाखायनंतास्य, ये जो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ना उनके अंदर यदि हमें लगे अभी तक, अभी हमारे मन में ऐसा है कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई और भौतिक वस्तु भी मुझे आनंद प्रदान कर सकती है, तो फिर आपकी बुद्धि वन पॉइंटेड नहीं है। और जब तक बुद्धि वन पॉइंटेड नहीं है, कृष्ण में टिकी हुई नहीं है, तब तक हम सबको विचलित करने का कारण बनेंगे, है ना। लेकिन वो जिसके द्वारा यस्मान नो द्विजते लोको, जैसे भगवान श्री कृष्ण 2.70 में बताते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम सामोद्रमाप प्रविशन्ति यत्त्वत्। जैसे समुद्र के अंदर नदियां आती हैं, आती रहती हैं, परंतु वो कभी भी विचलित नहीं होता। वो विचलित क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने जल से संतुष्ट है ना, अपने जल से संतुष्ट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नदियां आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। उसी तरह से भक्त के हृदय में भी ख्वाहिशें आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यदि भक्ति करना शुरू कर दी तो ख्वाहिशें सोचेंगी, इच्छाएं सोचेंगी, ये तो बेचारा भगत है ना, इसको छोड़ देती हूँ। माया बोलेगी कि बेचारा सुबह उठता है, मंगल आरती करता है, 16 माला जप करता है, नियम को फॉलो करता है, छोड़ो इसको। कौन माया बोलेगी मैं इसको छोड़ दूं? माया तो और भी तीव्रता से आपको अपनी लपेट में लेने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप अपने कृष्ण से संतुष्ट हो, जैसे समुद्र अपने जल से संतुष्ट है, एक तो आपको एकदम संतुष्ट रहना, और दूसरा समुद्र का क्या गुण है, क्योंकि वो बहुत डीप होता है, समुद्र की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। उसी तरह से अगर हम भी भक्ति में बहुत डीप चले जाते हैं, बहुत गहरे चले जाएंगे, जैसे जैसे कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम और भी गहरा होता जाएगा, फिर क्या होगा, यस मानो द्विजते लोको, हम किसी और को, एक भक्त जिसका खाली संबंध कृष्ण के साथ है, वो भला किसी को क्या विचलित करेगा, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको क्या फर्क पड़ता है, जो भी करे सो करे, वो क्या करेगा, अपनी सारी ड्यूटीज ये सोचकर करेगा कि कृष्ण ने मुझे ये ड्यूटीज दी हैं तो मुझे ये निभानी है, बाकी दूसरों की मर्जी है वो जैसे भी करें। तो वो दूसरों को विचलित नहीं करता, लोका नो द्विजतः दुजते यहाँ, और जो वो ना ही लोग जो हैं, लोग जो भी कर रहे हैं भले, उस वो कोई काम ऐसा नहीं करता जिससे दूसरों को डिस्टर्ब करे, वो अपने धुन में लगा रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और वो दूसरों को विचलित नहीं करता। और दूसरे भले कुछ भी करते रहे, आज हम हमारी लाइफ को अगर देखें, हम कितना डिस्टर्ब होते हैं, किसी ने कुछ कर दिया तो उस बात को उछालने में हम कितना इंटरेस्टेड होते हैं, उसने ऐसा किया, वो भक्त है उसको ऐसा करना चाहिए, भक्त होकर ऐसे करता है, अरे वो भक्त है तो वो भगवान जाने ना, भगवान है ना उसके सामने, भगवान देख रहे हैं ना वो कर रहा है, हम क्या कौन होते हैं उसका जजमेंट करने वाले, उसने ऐसा किया, उसने उसको ऐसे कर दिया, उसने, हम कितना लोगों की जो भी बातें होती हैं उनके सारे उसके अंदर कितना इंटरफेयर करते हैं कि वो चीज उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में बात करना, इवन अभी भक्त बन जाते तो दूसरों की बातें नहीं करते, भक्त समाज में ही जो जैसे करता है उसकी ही निंदाएं करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो हमारी भक्ति उन्नति नहीं होती, 20-20 साल से 25-25 साल से यहीं पर परे मरे हुए आगे बढ़ ही नहीं सक रहे, क्योंकि भक्तों के बारे में कहना शुरू कर देते हैं, अब भक्तों की निंदा करेंगे तो कहां से हमारी भक्ति की उन्नति होगी। इसलिए जो वास्तव में भक्त है ना, जो दृढ़ निश्चित हो, जो बहुत ज्यादा भक्ति में डीप चला गया है तो वो संसार की किसी वस्तु से विचलित नहीं होता, और क्योंकि उसका मन सदा भगवान की सेवा में स्थित होता है, एकदम टिका हुआ होता है कि मेरी सेवा कैसे अच्छी हो, मैं कैसे कृष्ण को खुश करूं, मैं कैसे अच्छा जप करूं, मैं कैसे अच्छा प्रचार करूं, मैं कैसे अच्छी सेवा करूं, जब पूरा का पूरा यही हर वक्त यही सोच रहा होता है कि मेरी तो खुद की सेवा अच्छी नहीं होती तो दूसरों को भला क्या करता है, क्या कैसे वो विचलित करने का उसके पास टाइम होगा, अपने लिए उसको मुश्किल से टाइम मिलता है। इस कलयुग में मुश्किल से तो हमारी अपनी साधना पूरी करने के लिए हमें टाइम मिलता है, और फिर दूसरों के लिए सोचते रहे कि वो कर रहा है नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा। देखो प्रीचिंग एक अलग टॉपिक है, जब हम प्रीचिंग करते हैं तो हमें दूसरों को इनकरेज करना होता है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्या मसला है, फिर उनको थोड़ा सा, लेकिन जब तक हमारा वो लेवल नहीं आता है तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी साधना को, और जो टीचर भी होते हैं उनको भी देखना चाहिए मेरी साधना अच्छी हो रही है, मैं इस योग्य हूं, मैं दूसरों को जाके बता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी साधना, जितनी अच्छी हमारी साधना होगी उतना ही अच्छा हम दूसरों को गाइड कर सकेंगे। तो हमें देखना है कि मेरी साधना अच्छी जा रही है, क्या मैं अध्ययन कर रही हूँ उसके ऊपर मैं फॉलो कर रही हूँ, तो दूसरों को विचलित नहीं करना। फिर जब ऐसा वो करेगा तो क्या होगा, दूसरों को जब वो बात बोलेगा ना तो वो भी विचलित नहीं होंगे बल्कि उस बात को स्वीकार करेंगे। और आगे ये जो बात है ना, भगवान कह रहे हैं हर्षामर्ष, हर्ष हो या दुख हो, बायोर हर्षामर्ष भयो उद्वेग, भय और उद्वेग क्या मतलब होता है, चिंता। भय किसका होता है, फ्यूचर का होता है, है ना, भय भविष्य का होता है कि कहीं मेरे साथ बुरा न हो, कहीं मेरे साथ कोई गलत न कर दे, कहीं मेरे साथ ऐसा न हो जाए, उस चीज का भय। हर एक व्यक्ति आज भयभीत है, जो धनी है वो इसलिए भयभीत होते हैं कि कहीं मेरा धन न छीन ले कोई, और जिनके पास जो निर्धन है उनको ये भय होता है कि आगे हमारा क्या होगा, है ना। तो हर कोई व्यक्ति जो जिसके पास कुछ है वो भी, और जिसके पास कुछ नहीं है वो सब भयभीत है अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन वो कैसे भयभीत हो सकता है जिसका फ्यूचर सुरक्षित है कृष्ण के हाथों में, जिसको कृष्ण ये गारंटी दे रखी है कि योगक्षेमम वहामि हम, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसको संरक्षण। भगवान की बात पर जिसको पूरा का पूरा भरोसा है वो भला भयभीत कैसे होता है। हर्ष का मतलब होता है कि देखो इस भौतिक जगत की बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है ना किसी को, भौतिक जगत में ये मिल गया तो खुशी होती है, वाह आज मुझे iPhone 6 मिल गया, आज मुझे इतना बड़ा घर मिल गया, ये गाड़ी मिल गई, तो भौतिक जगत की ये सारी वस्तुएं जो है वो मिलती है तो फिर आनंद आता है, हर्ष होता है। और जब उनमें से कुछ छिन जाता है या कोई हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है तो दुख होने लगता है। लेकिन भक्त इन दोनों में हर्ष, शोक और भय और चिंता, चिंता किस चीज की होती है, भय फ्यूचर का होता है, चिंता इस बात की होती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, इसके बारे में पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, वापस होगा, चिंता चिंता जो है ना वो भी फ्यूचर की भी होती है कि अभी पता नहीं बेटियों का क्या होगा, आगे क्या होगा, इसका क्या होगा, चिंता लगी रहती है। आजकल हर किसी जीव को चिंता होती है, तो लेकिन जिसने अपना पूरा का पूरा संरक्षण जो है वो कृष्ण को सौंप दिया है तो उसको ये चार चीजों से वो मुक्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर है जीना, कितना सरल हो जाए जब सुख दुख भय तथा चिंता में व्यक्ति समान हो जाए। ऐसा नहीं है कि भक्त पत्थर दिल होता है, भक्त के हृदय में भी इमोशंस होते हैं, लेकिन क्या है कि जब हम अपने लक्ष्य पर फोकस होते हैं ना तो दूसरी चीजें हमें विचलित नहीं करती हैं, है ना। ये जो भगवान बोल रहे हैं ना हर्षामर्ष भयोद्वेग, ये हर्ष शोक और चिंता और भय से बिल्कुल मुक्त होता है, उससे एक जैसा लगता है। वो क्यों, क्योंकि भक्त जानता है ये सब जो संसार में भौतिक वस्तुएं हैं वो सब तो टेम्पररी हैं, आज सुख है तो कल दुख होगा, आज अगर भय है तो कल निर्भय हो जाएंगे, ये संसार की, ये तो शरीर भी नाशवंत है ये भी टेम्पररी है, तो इससे रिलेटेड वस्तुओं के लिए क्या परेशान होना, ये तो उसको क्या लगता है वो ज्यादा उसके लिए इन्वॉल्व नहीं होता, इन सारी चीजों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, वो जानता है कि मैं वास्तव में आत्मा हूँ, मेरा कल्याण इन वस्तुओं के प्राप्त करने से या खो जाने से मेरा कोई घाटा होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बताते 2.14 में कि माता स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्याता स्वभाव था, कि ये जो मात्रा स्पर्शास्तु, ये जो स्पर्श है ना हमारी इंद्रियां, तो ये जो संसार में जो भी सुख और दुख है ना वो कैसे हैं, जैसे सर्दी और गर्मी, शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी और गर्मी आते हैं तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपने शरीर को यह शिक्षित, इस तरह से शिक्षित करना है कि वो सहन करे, है ना। अगर हम इसमें विचलित हो जाएंगे, अब आज जून जुलाई में गर्मी होगी, फिर वापस से नवंबर दिसंबर में सर्दी आएगी, अब गर्मी में भी हम रोने बैठ जाएंगे गर्मी है गर्मी है, और सर्दी में भी हम लोग रोने बैठ जाएं सर्दी, अब जो है सो है, उससे हमें किस तरह से बर्दाश्त करना है। तांस्तितिक स्वभारत, भगवान कहते हैं उसको बर्दाश्त करना सीखो। तो संसार में जो भी है, सुख है दुख है चिंता है भय है, उससे जो भक्त होता है वो क्या सोचता है कि ये तो टेम्पररी है, आया है चला जाएगा, तो इसके लिए मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब उसके लिए समान होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो सब अभी हम लोगों ने पढ़े हैं ना, कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो किसी से ना तो द्वेष करता है लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, अपने को स्वामी नहीं मानता है और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, यहाँ पर भी भगवान ने बताया सुख दुख में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, यहाँ पर भी बताया और यहाँ पर भी हर्षम हर्ष भय, तो भगवान कहते हैं सुख दुख में समान रहता है, सहिष्णु होता है, सदैव आत्मतुष्ट होता है, आत्मसंयमी होता है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में अपना मन और बुद्धि स्थिर करता है, भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। आज भगवान ने बताया जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता है, जो दुख में भय तथा चिंता में स्वभाव समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब भक्त ऐसा कैसे कर पाता है, भक्त इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि वो कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, है ना, और वो देख रहा है कि अगर मैं भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता हूँ या भौतिक किसी भी चीज से मैं अगर आकर्षित होता हूँ या फिर उनकी ओर अपना माइंड उनकी तरफ जाता है तो मेरा भजन डिस्टर्ब हो रहा है ना। अगर देखो यहाँ पर भगवान ने कहा यस्मान द्विजते लोका, जैसे कोई भी विचलित नहीं होता, जो दूसरों को विचलित नहीं करता, जैसे ही हमारी वजह से दूसरे विचलित होंगे ना उसी समय हमारा जो भजन है वो डिस्टर्ब होने लगेगा, है ना। हम फोकसली तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते जब तक हम दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करें और दूसरों के कारण हम डिस्टर्ब ना हो। अच्छा यहाँ तक है कि जो भक्त होते ना, जो भक्त उनकी वजह से अगर कोई डिस्टर्ब हो जाता है, भले उसकी गलती भी नहीं होती है, फिर भी अगर वो उनकी वजह से डिस्टर्ब होता है तो भी उसकी भक्ति है ना वो फोकस्ड नहीं होती, उसका भजन जो है वो डिस्टर्ब होता है। जैसे हम एक कथा जानते हैं सनातन गोस्वामी एक बार भजन कर रहे थे, जब वो भजन करते थे ना, जब वो पवित्र नाम का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो साक्षात श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के उनको दर्शन होते थे। तो भजन कर रहे थे, वो दर्शन कर रहे थे भगवान और राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं का, उन देखा कि कृष्ण जो है वो एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और इधर से राधा रानी गुजर रही है। राधा रानी गुजर रही थी तो कृष्ण ने क्या किया, अपने पैर के अंगूठे से उस वृक्ष की टहनी को नीचे कर दिया। अभी नीचे किया तो बहुत नीचे आ गई टहनी और राधा रानी ने उसको पकड़ लिया। राधा रानी ने जैसे ही उसको पकड़ लिया, कृष्ण ने अपना अंगूठा हटा लिया। अभी अंगूठा हटा लिया तो टहनी वापस से ऊपर हो गई, राधा रानी भी टहनी के साथ ऊपर हो गए। राधा रानी ऊपर हवा में लटक रही है और कृष्ण को बोल रही, कृष्णा क्या है ये, पीछे तुमने किया मुझे, अभी उतारो यहाँ से। तो ऐसे राधा रानी कृष्ण को ऐसे बता रही थी। तो सनातन गोस्वामी लीला देख रहे थे और जैसे ही राधा रानी हवा में ऊपर उड़ गई तो फिर उनको हंसी आ गई, राधे और कृष्ण की लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं और उनको आनंद में हंसी आ गई कि कृष्ण और राधा रानी किस तरह से अपनी लीलाएं कर रहे हैं। वो लीला केवल रूप को सनातन गोस्वामी को दिख रही थी, लेकिन वहां से एक दूसरे वैष्णव गुजर रहे थे जो सही तरह से नहीं चल रहे थे, टेढ़े होकर चल रहे थे, मतलब उनका चलने का तरीका कुछ ऐसा था। तो फिर उनको ऐसा लगा कि जो सनातन गोस्वामी है ना, वो मुझे देखकर हंस रहा है, ये इतना बड़ा भक्त है, उसको इतना भी मतलब इतना भी तरीका नहीं है, इतने भी मिनर्स नहीं है कि एक भक्त के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अभी मुझे भगवान ने जैसा बनाया है मैं वैसा ही हूं ना, मुझ पर हंस रहा है ये कोई भक्त कहलाने के योग्य नहीं है जो मेरे पर हंस रहा है, मुझे तो मेरे भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। तो ऐसा जब उन्होंने सोचा ना कि सनातन गोस्वामी उनको देख के नहीं हंस रहे थे, लेकिन है ना जैसे ही वो उनके कारण विचलित हुए ना, तो फौरन से क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी का भजन डिस्टर्ब हो गया, उनका मन ही नहीं लग रहा, लीलाएं गायब, जो लीला उनको दिख रही थी सब गायब। सनातन गोस्वामी इतने विचलित हो गए कि अब मुझे कृष्ण लीला के दर्शन नहीं हो रहे। वो रूप गोस्वामी के पास गए और बोला मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं रोज जब भजन करता था तो मुझे भगवान की लीलाओं के दर्शन हो रहे थे, आज तो हो रहे ही नहीं है, पता नहीं मुझसे क्या हो गया जो मेरे ठाकुर जी मुझसे रूठ गए हैं, मुझे दर्शन नहीं दे रहे। तब रूप गोस्वामी ने उन्हें कहा कि कहीं किसी वैष्णव की निंदा तो नहीं कर ली, या किसी वैष्णव को दुखी तो नहीं कर दिया, आपके कारण कोई विचलित तो नहीं हुआ जो तुम्हारा भजन डिस्टर्ब हो गया है। तब बिना सनातन गोस्वामी ने बोला मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो सदैव कृष्ण की लीलाओं में ही ध्यान लगा होता है मेरा, मैं किसी के प्रति ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। तब बोला तुम ऐसा करो, तुम घर में भंडारा रखाओ, सारे ब्राह्मणों को सारे वैष्णवों को न्योता दो, सब आएंगे, अगर कोई नहीं आया ना तो समझ लेना कि उसको तुमने बहुत कष्ट पहुंचाया है जिसके कारण तुम्हारा भजन डिस्टर्ब हुआ है। जब ऐसे हुआ, उन्होंने घर में भंडारा करवाया और सारे ही जितने आस पड़ोस के वैष्णव थे वो आए, उसमें वो नहीं आया जिस पर जिनको ऐसा लगा था कि सनातन गोस्वामी मुझसे हंस रहे, तो उनको लगा कि हाँ शायद यही इन्हीं कोई मेरे कारण कोई कष्ट हुआ होगा। जब गए तो फिर उन्होंने बताया कि तुम बड़े भगत अपने आप को कहते हो कि मैं वैष्णव हूं, मैं शुद्ध भक्त हूं, तुम मुझ पर हंस रहे थे। तब सनातन गोस्वामी उनके चरणों पर गिर गए, उनसे रो रो कर क्षमा याचना करने लगे कि आप वैष्णव हो, आप मेरी इस भूल को क्षमा कर दो, मेरा कृष्ण जानता है कि मैं आपके ऊपर नहीं हंस रहा था, लेकिन आपको मेरी कारण कष्ट तो हुआ ना, मैं आपके कष्ट का कारण बना हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा अपराध है, आप मुझे क्षमा कर दो, जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करोगे तब तक मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे कितना भी दंड देना है दे दीजिए, लेकिन अपने हृदय में मेरे लिए इतना वैर भाव नहीं रखिए, आप मुझे एक तुच्छ प्राणी समझकर क्षमा कर दीजिए, मेरा भजन नहीं हो रहा है। तो एक भक्त जो होता है उसको सबसे ज्यादा फिक्र होती है अपने भजन की, इसलिए भौतिक वस्तुओं की ओर उसका जरा भी इंटेंशन नहीं होता है। और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो गुण हैं, जैसे भगवान कहते हैं सच में प्रिय, ऐसे भक्तों को मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो हमारे मन में ऐसा आता है कि हमारे अंदर तो इसमें से एक भी क्वालिटी नहीं है, मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता ही नहीं है कि ये क्वालिटीज कभी भी मेरे मन में आ सकती है, मेरे अंदर कभी इतनी प्योरिटी आ सकती है जो भगवान बता रहे, तब तो फिर कभी भी हम कृष्ण के प्रिय नहीं बन सकेंगे। लेकिन भगवान चैतन्य इतनी करुणामयी है, इतनी दयामयी है कि वो कलयुग में, इस कलयुग में नाम, भगवान के नाम अवतार को लेकर आ गए और बोल दिया कि नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इस नाम में भर दी हैं। अब क्या करना है हमें, हमें केवल कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महामंत्र को जप करना है बस। बाकी जब हम भगवान के पवित्र नाम को जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होगा, जितने भी अभद्र हैं, जितनी भी अपवित्रताएं हैं, जितने भी हमारे अंदर दोष हैं, वो स्वतः नाश हो जाएंगे। भक्ति जब हम कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, साधु संग करते हैं, तो फिर दूसरी जो क्वालिटीज है ना वो कहीं से लानी नहीं पड़ेंगी। भक्त के अंदर वो सारी क्वालिटीज आ जाती हैं कि वो कैसे कृष्ण का प्रिय बने। खुद ब खुद उसके अंदर वैराग्य आएगा, खुद ब खुद हृदय के अंदर करुणा उत्पन्न होगी, खुद ब खुद भौतिक आसक्ति समाप्त होगी, खुद ब खुद हर शोक दुख और चिंता में हर वस्तु में वो एक समान हो जाएगा। बस उसका फोकस्ड होना चाहिए इस महामंत्र के ऊपर। हम जैसे जैसे भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान के इन शब्दों को पढ़ते जाएंगे, तब ऐसे ऐसे हमारे अंदर वो क्वालिटीज खुद ब खुद आ जाएंगी। भक्त केवल बस यही सोचता है कि मुझे कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना है, उनकी कथाओं का श्रवण करना है, और जितना इसमें डीप होता जाता है उसके अंदर खुद ब खुद स्वतः वो सब क्वालिटीज आने लगती हैं और वो कृष्ण का प्रिय होने लगता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपने भजन में दृढ़ हो सकूं, मैं अपनी सेवा और साधना अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।